ओम शांति। आप सब माताएं जो यहां मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, प्रीत का प्रतिरूप है। मेरा मानना है कि प्रीत ही तो है जो आपको यहां तक खींच लाई। ये बात जुदा है कि आप कहते हैं मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन से प्रीत है। कहेंगे मधुबन नहीं, बाबा से प्रीत है। अच्छा, बाबा से प्रीत है। कहेंगे नहीं, वो दादी मिलती है ना, दादी से प्रीत है। प्रीत तो है, कहीं है, किसी से है, बाबा से है, दादियों से है, इस मधुबन से है, लेकिन प्रीत है। तो वास्तव में अगर देखा जाए, किसी भी विद्यालय में आज तक प्रीत कैसे की जाए ये सिखाया नहीं जाता। सिखाया जाता है? कोई दुनिया में विद्यालय नहीं बना। हिंदी की डिग्री मिल जाएगी, हिस्ट्री की मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, बहुत सारी डिग्रियां मिल जाएंगी, साइंस की मिल जाएंगी, कॉमर्स की मिल जाएंगी, क्या प्रीत की भी कोई डिग्री मिलती है? कहीं नहीं मिलती। लेकिन मीठे बाबा का ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आप में जो प्रीत करना सिखाता है, आध्यात्मिक प्रीत। प्रीत तो आपने बहुत की, प्रीत न की होती तो आप यहां तक पहुंचे नहीं होते। और खास तौर से ये सब्जेक्ट बहनों के हिस्से में आया है, भाइयों के हिस्से में नहीं आया। वैसे भले भाई बैठे हों, लेकिन इसके हकदार प्रीत करने की हमारी बहनें हैं। कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी माँ के रूप में, कभी किसी और रूप में, माने जो भी प्रीत का चर्चा हुआ है वो बहनों से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करते। अगर भाई प्रीत नहीं करते तो ये जो इतने बड़े बड़े परिवार हैं, इनका संरक्षण करते हैं, इनको संभालते हैं, इनको सुरक्षा देते हैं, तभी तो देते हैं जब प्रीत। अगर भाइयों को प्रीत नहीं होती तो ये परिवारों के संरक्षण की बात ही नहीं आती, बहनों की सुरक्षा की बात ही नहीं आती। ये सुरक्षा और संरक्षा जो हमारे परिवारों को मिलती है, ये भाइयों की प्रीत से मिलती है ना। दोनों का समायोजन, दोनों से थोड़ा हट के ऊपर आइए, सब्जेक्ट वही है, दोनों से थोड़ा सा हटकर आइए। कहां आइए? प्रभु के द्वार आइए, क्योंकि आज का विषय है प्रभु प्रीत। प्रभु प्रीत दुनिया में बहुतों ने निर्वाह की, किंतु उन बहुतों में, बहुत सारे संतों में, बहुत सारे भक्तों में, जिन्होंने चरमोत्कर्ष पर, जिसको कहते पीक पॉइंट तक प्रीत करना, दो ही तीन नाम आते हैं। भक्ति मार्ग में तीन नाम ऐसे हैं जो प्रभु प्रीत की दीवानगी से लेके बलिहार जाने तक, समर्पित होने तक। बता सकते हैं आप तीन नाम कौन से? बताइए। अच्छा, मीरा, राधा और जी अच्छा सुदामा और प्रहलाद और वाह, आपने तो बहुत सारे नाम बता दिए, मैं तो केवल तीन की बात की। देखो, सबसे पहले मैंने कहा ना पीक पॉइंट तक, जिसको कहते हैं चरमोत्कर्ष। जब किसी से प्रीत की जाए तो जो अपना निज स्वरूप होता है वो भी लोग भूल जाते हैं, भूल जाते हैं ना। मैं आपसे ही चर्चा करूं, आपसे ही पूछूं, आज से 40 साल पहले की अपनी वो फोटो निकालिए जब आप किसी दूसरे परिवार में आई थी, तब आप कहेंगे अरे तब हम ऐसे थोड़ी थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ऐसे थे। हाँ, उस फोटो को जरा एक बार देखिए जब आप पहले पहले आई थी, 40 साल पहले, 30 साल पहले। हाँ, लेकिन आज उस परिवार में जिम्मेवारियों का वहन करते करते, प्रीत निभाते निभाते आज की तस्वीर खींचिए कैसी हो गई। पूरी तरह से आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। हाँ, किसी ने मिसेस शर्मा बनके, किसी ने मिसेस वर्मा बनके, किसी ने पाटिल बनके, किसी ने समथिंग, कोई ना कोई जो सरनेम आज हमें दुनिया में मिला हुआ है, हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम भूल गए हम जब आए थे तो क्या थे, आज कैसे हो गए। तब बालों में कालीमा थी, आज लालिमा है, सफेदी। इतना समय गुजार दिया हमने, एहसास होता है क्यों गुजार दिया? प्रीत की रीत निभाने में गुजार दिया। क्या मिला थोड़ा सोचना, मन की गहराइयों में जाके इस विषय पर सोचना कि जो कुर्बानी आपने दी उसका उत्तर क्या मिला। चिंतन कर लिया होगा आपने, बहुत कुछ पाया है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ पाया नहीं, लेकिन उस पाने के बाद भी कहीं ना कहीं कोई दर्द, कोई एहसास, कोई तकलीफ होती है जिसे आप शेयर करते हैं। लेकिन प्रभु प्रीत में कोई दर्द नहीं है, कोई ऐसा एहसास नहीं है। प्रभु की प्रीत में 7 रंग हैं, हमेशा खुशियां हैं। मैंने कहा था केवल 3 नाम, प्रीत मीरा ने भी की थी, राधा ने भी की थी, लेकिन राधा ने साकार में देखा, सुना, समझा, मिला, रास रचाया। राधा को सानिध्य मिला था, मीरा को नहीं मिला। आप सब राधा हो या मीरा हो? अच्छा, कितनों ने बाबा को देखा है साकार में, हाथ उठाना। वेरी गुड, वेरी गुड, जरा जोर से उठ के खड़े हो जाइए जिन्होंने बाबा को देखा है साकार में। साकार में जिन्होंने बाबा को देखा है, कोई है नहीं? अच्छा, दादी को? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, दादी को तो बहुतों ने देखा है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो राधा को सानिध्य मिला, मीरा ने तो देखा भी नहीं था कृष्ण को। मीरा को केवल मीरा की मां ने कहा था, यही है तेरा सब कुछ। क्या निभाया मीरा ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है मीरा के वो 2 शब्द। कहते हैं रोज रात को मीरा खेला करती थी कृष्ण के साथ, और ये कहा करती थी, हारी अगर हार गई, हारी तो पिए की भई, कुछ और है ही नहीं दांव पे लगाने के लिए, अपने आप को लगा रखा था। और अगर जीत गई तो बोली, जीती तो पिए मोर। श्री कृष्ण को कहती थी, अगर मैं जीत गई तो कल से तुम मेरे हो जाओगे, और तो कुछ है नहीं लगाने के लिए। बाबा ने भी आज इतनी आत्माओं को जो प्रीत का सौदा सिखाया है, कैसा है? इसी तरह कुर्बान जाने का सौदा है। जो कहते हैं कि हम प्रभु प्रीत के परवाने, प्रभु के दीवाने, आपको मालूम हो कि सबने प्रीत की मगर नाम तीन ही लिए जाते हैं। मीरा का अंतिम समय कोई शरीर नहीं मिला था। मीरा ने जब शरीर छोड़ा था तो ये मशहूर है, आज तक कहीं कोई ऐसी समाधि नहीं है कि ये मीरा की समाधि है। महाप्रभु चैतन्य का भी कोई शरीर नहीं मिला था, और जाने दीजिए दोनों को, कबीर का भी कोई शरीर नहीं मिला था। सब जानते होंगे जिन्होंने भी विद्यालय में शिक्षा ली है, दे नो वेरी वेल कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इस बात पर आपस में तकरार कर बैठे थे। एक कहता था सुपुर्दे खाक करेंगे, एक कहता था सुपुर्दे आग करेंगे, लेकिन जब खोला गया तो न खाक के काबिल निकला न आग के काबिल, वहां तो कुछ फूल थे। कहां गया? तो जब हम कुर्बान जाते हैं, जब हम बलिहार जाते हैं, तो मैं न रहे तू न रहे। परमात्मा से भी जो प्रीत निभानी है, वास्तव में वो प्रीत ऐसी ही होनी चाहिए। प्रीत में कोई भी कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता। होता है? कभी किसी ने कह के सुन के पढ़ के प्रीत की क्या? की? किसी ने पढ़ सुन के नहीं की, लिख पढ़ के नहीं की, कोई प्लानिंग करके नहीं की, की क्या? सवाल ही नहीं होता। वो तो कहते हैं हो जाती है, ऐसे ही बोलते ना कि की नहीं जाती, हो जाती है। परमात्मा से भी आप सब याद करो, आपके जीवन में कोई मिरेकल, कोई घटना, कोई क्षण ऐसा जरूर आया होगा जब आप भगवान के बन गए, जब आप प्रभु परवाने बन गए। अच्छा नहीं आया तो दादी को तो देखा है ना? दादी को देखा है? दादी को न देखा हो तो चित्रों में देख लो। आप विचार करके देखो कि ये दादियां, आज हम कहते दादी, जिस समय पहली बार आई थी, इस यज्ञ की फाउंडर हैं, जब पहली बार ये दादियां बाबा के पास आई थी, यज्ञ में, इस यज्ञ की स्थापना में आई थी, क्या उम्र थी, क्या रूप था, क्या रंग था, क्या भावनाएं थी, सोचिए। ये क्या पैदा होते ही बुजुर्ग हो गई? इन्होंने अपनी सारी अवस्था, सारी आयु संयम में, नियम में, मर्यादाओं में निकाल दी, कुर्बान कर दी। कभी ये नहीं कहा कैसे होगा। आज आपके सामने दादी रतन मोहनी जी हैं, जितनी श्रद्धा रखी जाए कम है। क्या कहते हैं? कितने कितने घंटे योग करते थे, सारी सारी रात। दादियां जो इतिहास सुनाती हैं, जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था, विभाजन के समय कितना शोर शराबा था, और बाबा को वहां के पठान लोग कहते थे नहीं, आप नहीं जाएंगे हमें छोड़ के, आप रहिए यहीं, हम हैं ना। वो खुद कहते थे हम हैं ना, हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे आपकी, आप नहीं जाइए। कितनी बड़ी जिम्मेवारी उस समय थी। बहनें अलग बंगले में रह रही थी, परिवार अलग रह रहे थे, बाबा स्वयं अलग रह रहे थे, कैसे उन सब बंगलों को मैनेज करते होंगे। एक छोटी सी बात जिसे चुनौती कहते हैं, बाबा ने क्लास कराते कराते कह दिया, अगर तुमको कोई भी हाथ लगाता है तो वो तुम्हारी कमी मानी जाएगी, ये माना जाएगा कि तुम्हारी लगन, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी प्रीत कहीं कमजोर है। किसकी हस्ती है जो तुम्हें देख जाए? हाथ लगाना तो बहुत बड़ी बात है। और जब दादियों के कान में ये शब्द बाबा के पड़े, उन्होंने उसको एज ए चैलेंज ही लिया। रात को 10 बजे जब नियम था कि बेड पे पहुंच जाना है, 3 मिनट योग करके सबको सो जाना है, कोई कहीं दिखाई न दे। वो बहन आती थी, हाजिरी लेती थी, सब बिस्तर पर पहुंच गए हैं, एक एक को चेक करती थी, सब अपनी जगह से ओम शांति हाजिरी दे देते थे। और जब वो बहन चली जाती थी, धीरे से उठते थे, कोई कहीं योग कर रहा है, कोई कहीं योग कर रहा है, कोई पेड़ की छाया में बैठा है, कोई कोई तो गमले के अंदर बैठा है, बड़े बड़े सीमेंटेड गमले हुआ करते थे, आज भी कोठियों में होते। और ये भी भय रहता था कि जो पहरा दे रहा है वो हमको देख न ले। लेकिन हम अपने योग की अग्नि को इतना प्रबल करें, इतना प्रबल करें, इतना प्रबल करें, जिसको बाबा कहता है शिव और शक्ति, मैं तुझ में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, एक रूप, एक लगन, एक निष्ठा, एक रस, एक व्रता, कौन? ये दादियां थी। इन दादियों ने जिस तरह से साधना की, जो हम कहते हैं ना 14 साल तपस्या की, वो तो की ही है, लेकिन जिस समय व्यवधान थे उस समय इन दादियों ने जो योग किया है उसकी महिमा अकथनीय है। मैं अगर सुनाने लग जाऊं तो लोग तो एक मीरा की चर्चा करते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ एक नहीं अनेक मीराएं हैं। और आज भी हम धनी हैं, कम से कम हमारे पास 4-5 दादियां तो आज भी मौजूद हैं, आज भी हम धनी हैं, पंच परमेश्वर हैं। आदरणीय दादी जानकी जी को देख लो, आदरणीय दादी गुलजार जी को देख लो, आदरणीय दादी रतन मोहनी दादी को देख लो, और भी दो दादियां यहां नहीं, यीशु दादी को देख लो। तो हर एक को बाबा ने कैसे तराशा और कैसे इन्होंने रात रात भर योग लगाया, हम देखते हैं। अभी भी बहुत से, बता दूं नहीं बताऊं, विश्राम में चले गए थे, बड़ा अच्छा लगता है आत्मा को, मीठी मीठी लोरी की तरह क्लास मिलती है, चले जाते हैं विश्राम में। हाँ, और ये दादियां सारी सारी रात जगती थीं, तो निसंदेह कुछ तो मिला था जो जगती थी। अगर वो प्रीत नहीं होती तो सारी रात का जागरण भी नहीं होता, मान के चलो नहीं होता। बाबा कहता है आप गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हो, आप अपनी पीठ ठोक के खुश हो जाते हो, क्या है? गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। जब बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इनसे पूछो, तो भी हम बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन वास्तव में सचमुच अपने आप से पूछो, गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपियां हो, ऐसी गोपियां जिन्होंने उद्धव को भी कह दिया था ए ले जाओ ये ज्ञान अपना, यहां मत सुनाओ, कहा था ना उद्धव योग योग हम नहीं, ये सब नहीं कर पाएंगे। यहां तो एक मन था, वो परमात्मा के साथ चला गया, उद्धव मन नहीं 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस, किससे हम योग लगाएं, दूसरा मन कहां से लाएं। लेकिन जब हमें बाबा मिला, बाबा का परिचय मिला, हमारा मन उस जगत नियंता से जुड़ा, तो दूसरे की तो बात ही नहीं आती, हमने उस परम सत्ता को अपना समर्पण किया जो सर्वशक्तिवान है। अगर हमने अपना समर्पण किया है और हमने उससे प्रीत की डोर जोड़ी है, पूछूं कुछ सवाल आपसे, पूछूं उत्तर मिलेंगे मुझे, कुछ सवाल हैं। जहां प्रीत होती है वहां कोई बैरियर आड़े नहीं आता, कभी भी कोई बैरियर नहीं आता। कारण नहीं आता, कार्य नहीं आता। आज अगर सेंटर पर दीदी बोलती है कि विमला बहन थोड़ा यहां रुक जाना, आज कुछ सेवा है, तो विमला बहन कहती है दीदी मैं कर तो देती लेकिन आज वो फला फला ना मेरे यहाँ आने वाले हैं, कैसे करूं मैं। कारण दिया ना, या आज ही मुझे जाना है कार्य, कभी कार्य कभी कारण सामने आ जाता है। प्रीत करने वालों में कभी कार्य और कारण सामने नहीं आता, ध्यान रखना इस बात को। सात ताले तोड़ के भी प्रीत की रीत निभाने वाले पहुंच जाते हैं। यज्ञ की जिन्होंने आदि इतिहास की किताब पढ़ी हो उन्हें ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे कि बाबा जब चला आया था तो लोग कैसे छोड़ छोड़ के अपने घरों को आए, कहा भी गया सुना भी गया फिर भी दौड़ दौड़ के, नहीं हमें तो वहीं जाना है, कुछ और करना ही नहीं है, परिवार के परिवार चले आए। लोगों ने कहा ये क्या कोई जादू कर दिया है। तो वो प्रीत थी जिसके कारण लोग आए, कोई कार्य नहीं देखा, कोई कारण नहीं देखा, और हम छोटे से कारण के कारण रुक जाते। अच्छा जो आए हैं वो कल तक रुकने वाले नहीं है क्या, रुकेंगे ना अभी दो चार दिन, बच्चे को बोलो थोड़ा देर उनको नाश्ता पानी देके संभाल लेगा, आप सेंटर से लौट के आके देख लेना। बोला नहीं ना, वो नाराज हो जाएंगे। क्यों, छोटी सी बात है, हमने कारण बना के हमें जो सेवा का सौभाग्य मिला था, क्या हम प्रीत की रीत निभा रहे हैं। चलो छोड़ो, दूसरी बात ले लो। शाम को 6:30 से 7:30 ये केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आश्रम में केंद्र में योग करना है, मधुबन आके 6:30 से 7:30 योग करना है, निष्ठा का समय है, बस इतना ही, या हमें अपने अपने घरों में भी करना है, विचार करना है, घर में करना है। अच्छा उसके बाद में अचानक पड़ोस से कोई बहन आ जाती है वही 6:30 से 7:30 के बीच में, और वो कहती है चलो ना मुझे बहुत जरूरी है, बच्चे को यूनिफॉर्म लेनी है, मैंने देखा नहीं है, प्लीज चलो ना, क्या करते हैं, मना कर देते हैं। कोटों में कोई होंगे जो मना करते होंगे, चले जाते हैं कि चलो अच्छा आज योग किया, बहन ने पूछा बोले नहीं वो फला आ गई थी ना इसलिए। थोड़ी देर विचार करो, अपने नियमों में समझौता करते क्यों हो। 6:30 से 7:30 हम अन्य भगवान को टाइम दिया हुआ है, या भगवान ने हमको टाइम दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट है हमारा, जो भी आ जाए उसको भी प्यार से बोलो हमारे योग का समय है, प्लीज आइए आप भी बैठिए ना, बिठा लो एक घंटे, क्या हर्ज है, बहुत फायदा होने वाला है। आप सोचते हो नाराज हो जाएंगे ना, बस अगर नाराज हो गई तो सारी कॉलोनी में कल बोल देगी उनके यहां कोई मत जाना, योग में बिठा देगी। फायदा ये होगा कि फिर शाम को कोई नहीं आएगा, नुकसान तो होने वाला है ही नहीं। और अगर वो भगवान के घर की आत्मा हुई तो क्या होगा, वो कहेगी बहन बहुत अच्छा लगा, आप रोज करती हैं क्या, कहां सीखा है, हमको भी ले चलिए ना। तो ये जो कारण और कार्य हैं हमारे मन के बनाए, हमने बाबा से प्रीत की रीत का वायदा किया है निभाने का, अरे पड़ोसी से थोड़ी किया है, लेकिन रुक क्यों जाते हो। भगवान को दिया हुआ समय, भगवान के लिए निश्चित समय किसी और को देने का हमें हक कहा जाता है। हम तो प्रभु प्रेमियों की कतार में खड़े हैं। जरा चिंतन करके देखो क्यों ये कार्य या कारण निमित्त बनते हैं, क्यों बनते हैं। दूसरा नो क्वेश्चन मार्क, बहुत पुरानी कहानी है, आप सबने सुनी होगी, बिना सुनाए बात पूरी नहीं होती कि केवल सारा दिन भक्ति में बड़ी मशहूर है वो नारायण 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 करने वाले नारद से एक बार पूछ लिया था, देखे इनकी कितनी अच्छी प्रीत है, बोले भाई बड़ा सर में पीड़ा हो रही, बोले कैसे दूर होगी प्रभु, बोले किसी भक्त की चरण रज मिल जाए वो लगेगी तो दूर हो जाएगा। बोला ठीक है कहाँ मिलेगी, बोला चले जाओ रणवास में शायद रानियों से मिल जाए। रणवास गए, रुक्मणी ने कहा कि अच्छा देते हैं, तो बोले क्या तुम्हारा दिमाग सही है, कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ तुम, तुम्हारे चरणों की रज द्वारिकाधीश के माथे पे लगेगी। बोला ठीक है जाओ कहीं और देख लो। कहाँ देख लें, फिर पहुंचे वहां तो श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करो वृंदावन चले जाओ वहां मिल जाएगी। जब वृंदावन गए गोपियों ने पूछा क्या हाल है कृष्ण का, तो बताया कि सर में पीड़ा हो रही है। बोले कैसे ठीक होगी, कहा चरण रज कोई भक्त दे दे। बोला कुछ लाए हो, तो कंधे पे पड़ा हुआ पटका उतारा, जो भी गोपी आई वही चरण रज झाड़ती चली गई, इतनी हो गई। तो समझाने की कोशिश की उन्होंने कि तुम लोग इतनी मूर्ख हो, अरे ये तुम्हारी चरण रज और उनके लगेगी, नरक मिलेगा नरक। तो गोपियों ने उत्तर दिया कि हमको रौरव नरक मिले, लेकिन तुम यहां से जाओ जल्दी ले जाओ, पहले सर दर्द ठीक हो, हमें क्या मिलेगा ये बात की बात है। इस उत्तर में झलक क्या है, कुर्बानी। गोपियों के स्नेह में निस्वार्थ भाव था, कुर्बानी थी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हम दावा जरूर करते हैं कि हम प्रभु प्रेमी हैं, प्रभु से प्रीत जोड़ रखी है, लेकिन अगर कोई कहे तुम योग करोगे तुम्हें ये मिलेगा, चलेगा? पहले तय कर लेंगे 21 जन्मों की बादशाहत लेके आया है। बहन जिसे पूछते हैं पक्का मिलेगी, इस एक जन्म में 21 जन्मों की बादशाहत लेके आया भगवान हमारे लिए। विचार करना, एक एक पल अमूल्य है संगम युग का। मैं तो आपका खामखा गंवा रही हूं। इस एक एक पल को जीवन में संजो लीजिए, भगवान से ज्यादा इसका महत्व हमें कौन सिखाएगा, कौन बताएगा। बहुत थोड़ा सा जीवन, बहुत थोड़े से पल और समय सीमित, कार्य असीमित। ये तो 21 जन्मों की बात है, यहां पीछे के 63 जन्मों का हिसाब किताब यही चुकता करना है। जितना हो सके उस परमात्मा से प्रीत की रीत हम निभा लें। करना है, करना है ये काम। अगर करना है तो गणित लगा के देखो। लोग कहते हैं इसमें तो कभी गणित होता ही नहीं, नहीं इसमें भी गणित होता है। कौन सा गणित होता है, जहां प्रीत होती है वहां अधिक से अधिक हम समय देते हैं। अपने आप से पूछ लेना, जहां भी प्रीत निभाई होगी वहां कितना समय आपने जाया किया, कितना समय लगाया। अगर किसी ने रोका ठोका होगा ना तो बहाना बना के भी गए होंगे, लेकिन गए जरूर होंगे क्योंकि प्रीत है। अधिक से अधिक समय हम वहां लगाते हैं जहां हमारी प्रीत होती है। तो भगवान को कितना समय देते हो, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की पुनियादी, क्या कहते हैं, कितना समय देते हैं हम। 24 घंटे में 8 घंटे तो दें, तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है। अरे सुबह का योग हो जाए यही बहुत है। अगर कोई अचानक पूछ लेता है अमृत वेले योग किया था, बोले कल तो उठे थे लेकिन आज बहुत थक गए। क्यों? 8 घंटे कोई मुश्किल कार्य नहीं, कोई मुश्किल कार्य नहीं। मुश्किल है क्या? जोड़ के देख लो, 4 से 4:45 योग करते हो, थोड़ा सा पुरुषार्थ करके आधा घंटा पहले उठ जाओ, 3:30 से कर लो, 3:15 से कर लो, 2 घंटे तो झोली में बिल्कुल सुरक्षित। उसके बाद ये जो अपन 7 बजे मुरली शुरू होती है ना, इवन देन यहाँ का हॉल भी 7 बजे है, 7 बजे मुरली होगी ना, 6:30 से 7 का योग करना ही करना, आधा घंटा वो भी प्लस हो जाएगा ना। जो सारे दिन में 12 घंटे 5:05 मिनट है, 1 घंटा वो भी हमारी झोली में आता है ना, उसको 5 से 10 कर दो तो 2 घंटे हो जाएगा। उसके बाद सायंकाल 6:30 से 7:30 करना ही करना है, और रात्रि को सोने से पहले जो करते हैं उसमें भी थोड़ा सा प्लस कर लो, काफी कुछ हो जाएगा। समय निकालना हमारे हाथ की बात। मुझे कभी नहीं भूलता कि आदरणीय हमारी गुलजार दादी ने न जाने कितनी बार समझाया, पानी भी पीते हो अगर 2 घूंट तो उसे याद करके पियो ना, वो भी तो 2 पल हमारे याद की गुल्लक में जमा हो जाएंगे। संगम युग में सबसे बहुमूल्य समय, और प्रीत की रीत निभाने वाले इस समय को कहां कहां गंवाते हैं। हम दूसरों से तो पक्का कराते हैं कि देखो समय जो है बहुत तेजी से जा रहा है, ये निकल गया तो वापस नहीं आएगा। बड़े बड़े लोग कोर्स कराते हैं, लोगों को पक्का कराते हैं, समय बहुत बहुमूल्य है, लेकिन शाम को 5 बजे जो लोग बाहर सब्जी वाले की आवाज पे खड़े होते हैं ना, निकल के खरीदते हैं, और सामने से भी लोग निकल के आते हैं, वो सब्जी वाला तो पता नहीं कब का चला गया, वो आपस में जो हेलो हाय हुई ना, आधा घंटा वहीं चला जाता है, इनके यहाँ क्या हुआ, उनके यहाँ क्या हुआ, उनके यहाँ क्या हुआ, फिर याद आता है अरे देर हो गई जाऊं जल्दी। विचार करना आप, ये जो दुकान खोल रखी है, 2 है, कितना कुछ इनसे जाता है अंदर, तो क्या समय नहीं जाता हमारा? फिर समय के बाद शक्ति, जहां प्रीत होती है वहां पूरी शक्ति के साथ होती है। ये जो शक्ति का प्रयोग है सुरक्षा प्रदान करता है। बाबा भी हमको वायदा करता है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, और हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं, बाबा है ना, बाबा हमारा रात और दिन का तारणहार है, करण करावनहार है, तो बाबा सर्वशक्तिवान है, हमारा साथी है, और ये शक्ति तन मन धन तीनों की होती है ना। कुछ भी होता है तो हम सामने वाले को तसल्ली देते हैं, हम हैं ना, एक फोन करना पहुंच जाएंगे, घबराते क्यों? तो बाबा को भी उसी तरह नजदीक रखें, बाबा हमारे साथ सहस्र भुजाओं से, मन बाबा का, धन बाबा का, इसके साथ और आगे बढ़े। संकल्पों में भी बाबा जैसे मन कहा ना, कहीं और ना जाए। आप देखते हैं सुबह शाम कभी अनाउंस करना पड़ता है, खो गया, डाइनिंग में छूट गया, बाबा के कमरे में छूट गया, कहीं और छूट गया, क्या हुआ? बोले मोबाइल खो गया। ये मोबाइल मधुबन जैसी स्वर्ग की भूमि में आकर के और हमें नरक की याद दिलाता रहता है, बुरा मत मानना। जब कहीं से फोन आता है, आप रिसीव करते हो, मानो वो कह रहा है वहां फला बीमार है, आप क्या करोगे? यहां से दौड़ के चले जाओगे? नहीं ना। लेकिन आपके मन में आ गया, कर योग रहे हो, वो बीमार है, वहां ऐसा हो गया, हम योग करके उसको भी निरोगी बना दें या उसका चिंतन करें। तो जहां हैं वहां ही रहें, ये बात समझने वाली है पूरी तरह से। धन की बात करते हैं, हमारी आदरणीय बड़ी दीदी थी, बड़ी दीदी बहुत अच्छी रीति से खास तौर से प्रवृत्ति वालों को समझाती थी कि धन का मतलब ये नहीं, कोई नहीं पानी है ऊपर से, जब आप तपस्या करते तो ऊपर से बरसता है। तो धन की बात जब होती है तो ये नहीं कहा कभी भी बाबा ने, किसी मुरली में नहीं कहा कि जितना भी धन है वो ला करके यहाँ यज्ञ में रख दो, कहा कभी? कभी नहीं कहा। और ना कभी दीदियों ने कहा, ना कभी दादियों ने कहा। जब जब लोग दीदी से सवाल पूछते थे तो दीदी कहती थी पांच हिस्से करो पांच। लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि क्या बात हुई पांच हिस्से करने की। तो कहती थी एक हिस्सा जिसमें तुम्हारा पूरा परिवार चल सके, पूरा परिवार जिसमें बाकायदे पूरे परिवार के खर्चे निबट जाते, वो घर परिवार में लगा दो। बोला दूसरा हिस्सा इमरजेंसी के लिए जमा कर दो, कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई बीमारी, कोई हारी, कुछ हो, इमरजेंसी के लिए लगा दो। बोला तीसरा हिस्सा, तो कहती थी तीसरा हिस्सा ये उसके लिए रखो, कोई आई बेल खर्च आ जाता है सामाजिक रीति रिवाज निभाने में, किसी के परिवार में, किसी के जन्मदिन में, किसी के किसी में। बोला चौथा हिस्सा बाबा को अपना वारिस बनाया उस बच्चे के लिए रखो। पांचवा बोला विश्व कल्याण के लिए रखो, कभी तकलीफ नहीं होगी। आंकड़े कभी नहीं बताए दीदी ने कि 100 में से 50 परिवार को दे दो, 25 उसके लिए रख दो, 15 उसके लिए रख दो, ये खुद की समझ चाहिए। तो हमारा तन मन धन, समय संकल्प और शक्ति हम कहाँ यूज कर रहे हैं और कहाँ यूज होनी चाहिए, इसका गणित लगा के देखो। हमारी दादियों ने जब कुर्बानी दी तो कुछ देखा नहीं, बाबा ने देखा क्या? साकार बाबा ने भी अलिफ को अल्लाह मिला, जिस दिन उस परमात्मा सत्ता की अनुभूति हुई, जिस दिन परमात्मा सत्ता ने प्रवेश किया उस दिन उसका हो गया। एक टेलीग्राम में सब दे दिया। तो ऐसी स्थिति क्या हम सब की है? आज प्रकृति का एक ही अंश है यहाँ, जो बारिश के रूप में है और हम सब का ध्यान उधर चला जा रहा है। कली की मुरली में था पांच माया के और पांच प्रकृति, दोनों मैदान में आपको अचल और अडोल रहना है। तो विचार करके देखो कि हमारा समय, हमारा संकल्प, हमारी शक्ति और हमारा ध्यान हमारी दादियां, हम कहते हैं हमारे परिवार कैसे चलेंगे। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, आपको राजी होना है। अगर आपने परमात्मा के साथ प्रीत की रीत निभाने का पक्का किया हुआ है तो कोई भी चीज हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकता, कोई भी ताला हमें नहीं रोक सकता। दूसरी बात बहुत अच्छी हमारी आदरणीय दादी जान की, दादी प्रकाशमणि आए, बाबा के बने, बहुत विदुषी थे, बहुत धारणा मूर्त थे, बहुत योग्य थे। बाबा ने उन्हें हाथ में हाथ देकर सारी शक्ति दे दी और बाबा के अव्यक्त होने के बाद 40 वर्ष निरंतर दादी जी ने इस यज्ञ को सजाया, संभाला। अगर कहें प्रीत की धरोहर थी यज्ञ, और दादी ने जीवन के अंतिम पल तक उस धरोहर को सजाया और संवारा। जानकी दादी को मैं एक शब्द इस्तेमाल करती हूँ जब भी उनका परिचय देती हूँ कि वो अपने आप में स्वयं सिद्धा है। उन्होंने जो कुछ पाया है पुरुषार्थ की कसौटी पर स्वयं को कसकर तब पाया है, लेकिन कभी भी दादी पीछे नहीं हटी। कोई भी बांधेली बहन जरा से बंधनों में परेशान हाल हो जाती और जानकी दादी को न जाने कितनी बार ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। जानकी दादी चाह करती थी आज यज्ञ में रुक जाऊं, बाबा छुट्टी दे दे। एक बार किसी ने सेवा दी, जानकी दादी को कहा आज पापड़ बनाने, और जानकी दादी ने कभी ना नहीं किया था, बड़े खुशी खुशी पापड़ बनाने बैठ गए। 11 बज गए रात के, वो बनाती थी। 11 बजे के बाद जब वो बन गए तो बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा वो पापड़ बना रही थी अभी पूरा हुआ है। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ तुमको फला भाई भेज आएंगे। अब दादी के तो मन में था कि अब तो देर हो गई ना, आज यही रुक जाओ। कभी दादी ने अपनी बात को जुबान पे लाया नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं व्यक्त की कि मेरे दिल के अंदर ये इच्छा है मैं यहाँ रुक जाऊं। इसीलिए बाबा उन्हें हमेशा जनक कहा करता। कभी उन्होंने कोई भावना व्यक्त नहीं की, अहिर्निश पुरुषार्थ किया, निरंतर पुरुषार्थ किया। आज निरंतर योग की चर्चा होती है तो योगी भी जनक जैसा और पुरुषार्थी भी जनक जैसा। ये एक घटना नहीं, एक बार दादी बड़े प्यार से मुझे चॉकलेट दे रही थी और चॉकलेट देते हुए विदेश से आई थी, हंसी बोला तुम खाते हो, मैंने कहा मैंने तो छोड़ दिया तब से नहीं खाती, तो बोले हाँ ठीक है मत खाना माया है। अच्छा ये माया ले कहाँ जानी है, तो दादी ने कहा फना को दे देना, मैंने कहा ठीक दे दूंगी। तो दादी ने कहा कि मुझे भी बाबा ने एक बार कहा था कि जनक तुम ये चॉकलेट मत खाना, ये बहुत बड़ी माया है। बोला तब से मैंने जुबान पे नहीं रखी है। तो कितना त्याग किया, और सच्ची प्रीत हमेशा त्याग मांगती है। आज जो आप माताओं की महिमा होती है रात और दिन, बहुत पुरानी बात है। साकार बाबा से किसी ने पूछा था कि आपका ये इतना बड़ा यज्ञ है ये चलता कैसे, तो बाबा ने कहा था मेरी माताएं चलाती। कैसे चलाती, बोला देख लेना जाकर। उस भाई को यकीन नहीं आया और वो क्लास चल रही थी उस समय, पांडव भवन की बात है, वो भाई किचन में गए। एक माता थोड़ी थोड़ी सी पोटली बना के लाई थी, दाल चावल हल्दी धनिया मिर्चा, तो वो उस समय कोई था नहीं भंडारे में, और उसने सोचा कि मैं भोली दादी को भी कैसे दूं, ये बहुत थोड़ा थोड़ा है, लेकिन बहुत दिल में उसकी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़ा दान नहीं कर सकती, कम से कम यही सही। तो वो बचत थी उसकी मास भर की जो वो लेके आई, और वो धीरे धीरे एक एक डब्बा खोल के उसमें डाल रही थी। जब उस भाई ने वहां खड़े होकर देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए कि वाकई ऐसा भी होता है। मैंने खुद भी देखा है कि माताएं कितने प्यार से, जिनको बहुत बंधन होते हैं, पता लगा कि वो एक एक आलू निकालती रहती हैं, कैसे सेवा करें, और वही खराब न होने वाली चीज है, जब वो जाती हैं 7 दिन में तो पता लगा वो 2 किलो लेके जा रही हैं कि बहन जी आलू लाए, ये नहीं मालूम कि लाए कैसे। तो किसी ने प्रीत की रीत निभाने पर ताले आज तक नहीं लगा पाए, और जब हमें प्रीत करने वाला स्वयं परमात्मा मिला हो तो क्या न पाए क्या लगा दें, ये सोचिए कि उस भगवान की प्रीत में हम क्या न पाए क्या लगा दें। अच्छा कुछ मत लगा दीजिए, बाबा कहता है बहुत बार तुम मुझे दोगे क्या, तन तुम्हारा रोगी, धन तुम्हारा काला, मन तुम्हारा विकारी, क्या दोगे, कहीं रोगी हो कहीं भोगी हो, फिर क्या दे। माताएं तो भजन गाती हैं तो कहती है ना, प्रभु तुमको किस चीज का भोग लगाए, ये भी झूठा है वो भी झूठा है वो भी झूठा है, हम बाबा को क्या दे सकते। हम यज्ञ रक्षक बनकर रहें, जो प्रीत की रीत निभाता है वो अपने यज्ञ की इतनी भी आलोचना नहीं सुन सकता, और सुनना बहुत दूर की बात रही, कर भी नहीं सकता, ना अपने मन में प्रवेश होने दे, ना कोई इस तरह की बात सुने, हमारे पास टाइम नहीं, और ना हम खुद करें। अगर ये सहयोग भी हम दे सकते हैं तो ये बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग। जो हम और लगाते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन दीदी हमेशा कहा करती थी कुछ करो या मत करो अखबार मत छापो। हमारे परिवारों में कोई बात होती है तो हम दबा लेते हैं, हमारी बहन की है, हमारी बेटी की है, हमारे फलाने की है, और अगर कोई पूछता भी है तो तुरंत कहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो वही थी। क्यों, हमारे परिवार की है। तो जब कोई बात होती है, क्योंकि आजकल ये व्हाट्सएप के माध्यम से बड़ी जल्दी सरकती है, कितनी सच है कितनी झूठ है कितनी अच्छी है कितनी बुरी कुछ पता नहीं, अरे हाँ हाँ हमारे व्हाट्सएप पे भी आया, समझो तो सही, अखबार क्यों छापते हो, फुल स्टॉप लगाना, पावरफुल ब्रेक। प्रीत की रीत वाले हो, प्रभु प्रेमी हो, कुछ करो न करो मगर ब्रेक तो पावरफुल रखो। ये आपका परिवार है और ये आपका सहयोग है, तो समय संकल्प शक्ति तन मन धन कुर्बान जाए किस पे, एक भगवान पे, और इस तरह जाए जैसे कबीर कहा करते थे कि चाहे खड़े रहें चाहे बैठे रहें चाहे टेढ़े रहें चाहे सीधे रहें वही रहें। तो मन और बुद्धि का तार एक प्रभु के साथ निरंतर जुड़ा रहे लगा रहे, आंखों में भी वो हो दिल में भी वो हो। बाबा जब कहता है तुम मेरे बच्चे दिल तक नसीर हो, कहता है ना कभी कभी आ जाओ ना क्या करते हो, अरे यहां बैठने से कोई रोकेगा, मेरे पास बैठने से कोई रोकेगा नहीं, न समय की बंदिशें हैं न स्थान की बंदिशें हैं, जब चाहो तब चले आओ, बेशक चले आओ, लेकिन एक बार पूछो खुद से अगर पैर गंदे हैं तो क्या भगवान के दिल तक पे चढ़ जाओगे? किसी के ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा कालीन बिछा हो, क्या गंदे जूतों सहित चले जाओगे? वैसा तो साफ रखना पड़ेगा ना जो दिल तक पे चढ़े। अगर हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस की मिट्टी लगी हुई है, चढ़ जाओगे? बुलावा तो है, निमंत्रण तो है, और सर्व संबंधों से प्रीत भी है, लेकिन रीत तो निभानी पड़ेगी ना। विधि नहीं तो विधान नहीं, विधान नहीं तो वरदान नहीं। विधि भी चाहिए, विधान भी चाहिए, वरदान भी चाहिए। प्रीत की रीत निभा सकोगे और आप सक्षम हो। कभी मत कहना हम कैसे कर सकते हैं। ये विधि केवल आपको आती, ये विधि केवल माताओं को आती। सच्ची सच्ची गोपियां हो, परमात्मा प्रेमी हो, उस परमात्मा से प्रीत लगाने वाले हो, केवल चेकिंग चाहिए कि ये मन कहाँ जा रहा है, ये समय कहाँ जा रहा है, ये धन कहाँ जा रहा है, कहीं हमारी गाड़ी डिसबैलेंस तो नहीं हो रही। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर संतुलन है तो सब कुछ है। चेक करो, बैलेंस करो, बहुत अच्छे से प्रीत की रीत निभाते हुए अपना दामन खजाने से भर सकते हो। ओम शांति।
रोज सजाई